بنتا ہے. لیکن پچھاڑے میں اس کا بھی حال کیا ہوتا ہے؟ کیا بے حال پرجا کا راج ہو جاتا ہے. پنچ اس کے اوپر راج کرتے ہیں, مانے رام کا راج نہیں ہوتا, پانچ سروں کا راج ہوتا ہے, پانچ بدھیوں کو دھارن من بدھی روپی سروں کا راج ہو جاتا ہے. تو ابھی کس کا راج ہے؟
سترہ ایک اٹھاسی کا پراتھ کلاس, پندرہ نمبر کے رجسٹر میں 43 پیج. ریکارڈ چلا ہے, لے لو دعائیں ماں باپ کی. بچوں نے گیت سنا, ایسے تو لوکک ماں باپ کی دعائیں انیک لیتے ہیں. بچے پاؤں پڑتے ہیں, ماں باپ آشیرواد کرتے ہیں. آشیرواد کب کرتے ہیں؟ جب بچے پاؤں پڑتے ہیں. وہ تو سول پاؤں ہیں اور لوکک ماں باپ ہیں, اور یہاں پار لوکک مات پتا, اور پاؤں کون سے ہیں؟ بدھ روپی پاؤں. ارتھات سیمت, تو جو سیمت پر چلتے ہیں ان کو آٹومیٹک آشیرواد مل جاتی ہے. یہ ڈھنڈورا لوکک ماں باپ کے لیے نہیں پٹایا جاتا ہے. ڈھنڈورا ارتھات جس کو بہت سنے, یہ تو بے حد کا باپ کے لیے ہی گایا جاتا ہے کہ تم مات پتا ہم بالک تیرے, تمہاری کرپا و دعا سے سکھ گھنیرے. بھارت میں یہ مہمان گائی جاتی ہے, ضرور بھارت میں یہ ہوا ہے. کیا کہ ان کی کرپا سے سکھ گھنیرے ملے ہیں, سب تو گایا جاتا ہے, ایک دم بےحد میں چلا جانا چاہیے. بدھی کہتی ہے سرک کر چہتا باپ ایک ہی ہے. تو دو چار دھرم پتا نہیں ہے. سورگ میں تو سبھی سکھ ہیں, وہاں دکھ کا نام نشان نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہی گاتے ہیں کہ دکھ میں سمرن سب کریں, سکھ میں کرے نہ کوئے. آدھا کلپ دکھ ہے تو سبھی سمرن کرتے ہیں. سچیو میں اتھاہ سکھ ہے تو وہاں سمرن نہیں کرتے. منشی پتھر بدھی ہونے کے کارن کچھ بھی نہیں سمجھتے. کلیگ میں تو اتھاہ دکھ ہے, کتنی مارا ماری ہے. کتنے بھی پڑھے لکھے ودوان ہیں پرنتو گیتوں کا ارتھ بالکل نہیں جانتے. گاتے رہتے ہیں تم مات پتا ہم بالک تیرے, پرنتو سمجھتے نہیں کہ کون سے مات پتا کی مہما ہے. جن کے لیے ہم گاتے ہیں کہ تم مات پتا ہم بالک تیرے, یہ تو بہتوں کی بات ہے نا. ایشور کی سنتان تو سبھی, پرنتو اس سمے تو سبھی دکھی ہے. سکھ گھنیرے تو کسی کو نہیں ہے. کرپا سے تو سکھ ملنا چاہیے, تو اس کا مطلب کہ ابھی باپ کی کرپا نہیں ہے. اکرپا سے دکھ ہوتا ہے. تو ابھی اگر براہمنوں کی دنیا میں کوئی دکھی ہے تو کیوں ہے؟ کیونکہ ابھی پوری کرپا نہیں ہوئی ہے. माने बाप के बच्चे अभी फुल परसेंट में बने नहीं हैं। ये क्या बात है? बाप बनाने में या बच्चा बनाने में भी परसेंटेज होती है क्या? ये कहेंगे कि 99% हमारा बाप है, 1% बाप नहीं है।
ओम शांति
हो। ओम शांति। आगे आ जाइए। हैं? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि 99% बाप है और 1% बाप नहीं है। बाप है तो 100% बाप है, और नहीं है तो 100% बाप नहीं है, हम उसके बच्चे नहीं। मतलब निश्चय में परसेंटेज नहीं होती है। तो सुख घनेरे किसको भी नहीं है, जिससे सुख घनेरे मिलते हैं वो माता पिता कौन से टाइम का गाया हुआ है, जो घनेरे सुखों का अनुभव किया है बच्चों ने? जरूर वो कयामत का समय है। चारों तरफ दुनिया में आत्माएं बिलबिलाएंगी और बाप के बच्चे अपने को घनेरे सुख में महसूस करेंगे। कृपा से तो सुख मिलना चाहिए ना। साधु संतों को भी कृपालु कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि भक्ति मार्ग में भी गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। सिर्फ गाते हैं लेकिन भाई बहन या भाई भाई समझते नहीं हैं। बिल्कुल यथार्थ कोई बुद्धिमान होगा तो कहेगा कि परम पिता को तो गॉडफादर कहा जाता है, उनको फिर मदर कैसे कहते हो? जब गॉडफादर है तो गॉडफादर इज वन या टू? फादर के साथ मदर कहां से आई? अच्छा भला माता पिता क्यों कहते हैं? माता स्त्रीलिंग और पिता पुल्लिंग। तो ज्योतिबिंदु को सिर्फ पिता कहेंगे या माता कहेंगे? वो सिर्फ हम बच्चों का पिता है, जिसको हम शिव कहते हैं। उसके साथ कोई दूसरा संबंध हम ज्योतिबिंदु आत्माओं का नहीं बन सकता, क्योंकि बताया मेरा नाम तो शिव ही है, वो कभी बदलता नहीं। जब शरीर बदलते हैं तो नाम बदल जाता है। तो क्या नाम बदला? जब जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो दूसरे संबंध बनते हैं, बाकी वो बिंदु बिंदु आत्माओं का सिर्फ बाप है, गॉड फादर है। जबकि निराकारी स्टेज में है। और माता कब बनता है? जब शरीर में प्रवेश करता है। तो पूछा, अच्छा भला माता पिता क्यों कहते हैं? वहां तो जगदम्बा की तरफ बुद्धि जाती है, तो फिर जगत पिता की तरफ भी बुद्धि जानी चाहिए, क्योंकि जगत पिता है तो जगत माता भी होगी, और जगत माता कहते हैं तो जरूर जगत पिता भी होगा। चाहिए क्यों कहा? बुद्धि जाननी चाहिए कि जरूर जो देवी के भक्त हैं उनकी बुद्धि सिर्फ कहां जाती है? माता की तरफ। जय माता दी। पिता को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि इसके ऊपर हाथ रखने वाला कोई कोई पिता भी है, बस माताओं के पीछे लग पड़ेंगे और पिता को भूल जाएंगे। बातें सब कहां की हैं? हैं? सुनो लोगों में कोई माताओं को याद करते हैं क्या? हैं? ब्रह्मा माँ को याद करते हैं? ब्रह्मा माँ तो शरीर छोड़ गई, वो तो पास्ट की बात हो गई। जय माता की जब गाते हैं तब तो मूर्ति को सामने रखते हैं, वहां जल मूर्तियां होती हैं और यहाँ यहाँ तो चैतन्य मूर्तियां होती हैं। तो ब्राह्मण की संग में भी दुनिया की ही बात बताई। तो वो जो साधु संत होते हैं वो एक तरफ माता की भी पूजा करते हैं, देवी की भी पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ शिव को भी याद करते हैं। अब ब्रह्मा सरस्वती ये कोई भगवान तो नहीं है। अभी जगदम्बा जगत पिता की बात बताई और उसके साथ ऐड कर दिया कि ब्रह्मा सरस्वती कोई तो भगवान नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा और सरस्वती का आपस में कनेक्शन क्या है? वो बाप है, वो बेटी है, तो ये तो भगवान भगवती इनको नहीं कहा जा सकता। जगत पिता या जगदम्बा नहीं कहा जा सकता, फिर कैसे कहा जाए? तो जरूर है, ब्रह्मा और सरस्वती की सोल कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके ये पाठ बजाती है, तब संसार में ये गायन होता है। क्या? जगत पिता और जगदम्बा। इसलिए मुरली में बोला कि समझते नहीं है कि बाप ने प्रवृत्ति में रह करके राजयोग सिखाया है। निवृत्ति मार्ग वाले राजयोग प्रवृत्ति मार्ग वालों को नहीं सिखला सकते। तो ब्रह्मा सरस्वती की प्रवृत्ति नहीं कहेंगे, वो तो उनकी बेटी थी। बाप की बेटी के साथ तो ये थोड़ी प्रवृत्ति होती है, तो ये महिमा उनकी नहीं हो सकती। इनकी ब्रह्मा सरस्वती, उनके आगे भी माता पिता कहना रंग है। किनके आगे? ब्रह्मा सरस्वती के आगे। मनुष्य गाते तो परमपिता परमात्मा के लिए है, परंतु जानते नहीं है कि वो माता पिता कैसे बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो माता पिता कैसे बनते हैं? कि वो ही परमपिता परमात्मा गीता माता में जब आकर के गीता माता की रचना करता है, 18 वर्ष धारा प्रवाह से वाणियां चलाता है, तो 18 अध्याय गीता बनती है। और वो ही गीता माता फिर जरूर प्रवेश भी करती है। तो जिसने प्रवेश करके संसार में प्रत्यक्ष होती है वही जगदम्बा का रूप है। ब्रह्मा के रूप की पूजा नहीं है, जगदम्बा के रूप की पूजा है। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ बड़ी माँ, और जगदम्बा माने सारे जगत की माँ। तो बात एक ही हुई या दो बातें हुई? एक ही बात हुई। तो जरूर एक ही सोल की बात है जो प्रवेश करके बच्चों में कार्य करती है। तो माता पिता कैसे बनते हैं ये जानते नहीं है। अब तुम बच्चों को कहा जाता है ले लो दुआएं माँ बाप की। ये दुआएं लेने की बात कब की है? जरूर है संगम युग में जब संपन्न स्टेज में बच्चे पार्ट बजाते हैं तो उनमें वो मम्मा और बाबा ब्रह्मा और सरस्वती की सोल प्रवेश करके पार्ट बजाती है, और उस समय का ये गायन है कि ले लो दुआएं माँ बाप की, अर्थात श्रीमत पर चलो। ये माता पिता ही सारे जगत में सबसे श्रेष्ठ माता पिता हैं, और धर्म पिताएं भी होते हैं। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट भी क्या हैं? बड़े नामी ग्रामी धर्म पिताएं, लेकिन वो तो सिर्फ धर्म पिताएं हैं, लेकिन यहाँ तो बापों का भी बाप आया हुआ है, जिसका कोई बाप नहीं, जिसको साकार में कोई वर्षा देने वाले अथॉरिटी कोई नहीं हो सकता, और वो माताओं की भी माता है जिसकी कोई माता हो नहीं सकती। उस माता की कौन पालना करेगा? जैसे बाबा कहते हैं कन्याओं की संभाल के लिए कौन होनी चाहिए? माता होनी चाहिए। जहाँ जहाँ भी कन्याएं जाए सर्विस करने के लिए, तो कन्याएं हैं तलवार और माताएं हैं ढाल। लेकिन जो जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली होगी उसके लिए कौन माता बनेगी? कोई बन सकती है क्या?
ड्रामा प्लान अनुसार उसका पार्टी ऐसा है कि उसकी कोई सुरक्षा करने वाली नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो जरूरत माता है। तो माँ बाप की दुआ लेना अर्थात श्रीमत पर चलना, अपनी चाल अच्छी हो तो अपने पर आते ही दुआएं हो जाएंगी। अगर चलन अच्छी नहीं होगी, इसको दुख देते रहेंगे, माता पिता को याद नहीं करेंगे, न किसको कराएंगे, तो दुआएं नहीं मिल सकती और तुम इतना सुख भी नहीं पा सकेंगे। कितना? जितना सुख पाना चाहिए। क्यों? कितना सुख पाना चाहिए? विश्व की बादशाही किसके द्वारा मिलती है? है? ब्रह्मा द्वारा विश्व की बादशाही मिलती है। तो ब्रह्मा जिसने शरीर छोड़ दिया उसके द्वारा? वो तो मीडिया ही नहीं, तो द्वारा कहेगा। शरीर छोड़ने की बात नहीं, लेकिन वो ही सोल प्रवेश करके, कोई ब्रह्मणी में प्रवेश करके ताट बजाती है साकार में, तो उस जगदम्बा के लिए गाया हुआ है कि जगदम्बा से विश्व की बादशाही तुम बच्चों को मिलती है, इसलिए मुरली में ऐसा बोला हुआ है। तो दुआएं नहीं लेंगे तो तुम इतना सुख भी नहीं पा सकेंगे। क्या लेंगे? दुआएं नहीं लेंगे तो फिर क्या लेंगे? है? अगर विपरीत बुद्धि हुए तो बददुआएं लेंगे तो सुख कहां से पा सकेंगे, क्योंकि परमात्मा बाप का सुख तो है ही राजाई नहीं मिल सकती, बाप की दिल पर नहीं चढ़ सकेंगे। इस बाप की दिल पर चढ़े तो गोया शिव बाबा की दिल पर चढ़े। क्या कहा? इस बाप और उस बाप क्या हुआ? इस बाप माना इस किसे कहा? मुरलियों में जब बोलते इस इनको, तो किसके लिए बोलते हैं? ब्रह्मा के लिए, क्योंकि बाजू में ब्रह्मा की सोल बैठ हुई होती है बोलते समय, तो इसलिए बोला इस बाप की दिल पर चढ़े तो गोया शिव बाबा की दिल पर चढ़े, और इस बाप की दिल पर न चढ़े तो शिव बाबा की दिल पर भी नहीं चढ़ सकते। शिव बाबा को भी दिल होती है, हैं? तो इस और उस ये दो बाप हो गए देहद के। इस बाप को माना ब्रह्मा, वो भी टाइटल धारी तो बाप हुआ ना, प्रजापिता का टाइटल तो मिला ना, यज्ञ के आदि में जो प्रजापिता गया तो उसका टाइटल किसको मिला? ब्रह्मा माँ को मिला, तो प्रजापिता ब्रह्मा टाइटल धारी तो हुआ ना, माँ और बाप की पालना तो की ना, तो वो ही सोल फिर किसी अंबा में या ब्राह्मणी में प्रवेश करके वो माँ का पार्ट बजाती, तो सोल तो वही है। तो इसलिए बताया कि इस बाप की दिल पर चढ़े तो गोया शिव बाबा की दिल पर चढ़े। इसका मतलब है कि ब्रह्मा की सोल भी रुद्रमाला के जो फर्स्ट दो माँ के हैं, ऊंचे से ऊंचे पार्ट बजाने वाले, उनमें से कोई एक मणके में प्रवेश करके साकार में पार्ट बजाती है, क्योंकि विश्व की बादशाही साकार में लेनी है या निराकार में लेनी है? मुरली में एक बार पूछा भी, निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए? निराकारी वर्षा तो नहीं, वो तो ज्ञान का वर्षा हो गया। वास्तव में हमें तो साकार में विश्व की बादशाही का वर्षा चाहिए, नंबर वार पुरुषार्थ होगा। तो बताया कि इनकी दिल पर चढ़े, इनकी माने किनकी? ब्रह्मा की मत पर चले तो जैसे बाप को भी खुश किया, और इनकी मत पर न चले तो फिर बाप को भी खुश नहीं किया। यानी बाप किससे बना हुआ? ये तो प्रवृत्ति मार्ग का देश है। अगर कोई बच्चा ये कहे कि हमने माँ को नहीं खुश करना है, हमको किसको खुश करना है? बाप को। तो स्वदेशी बच्चा हुआ या विदेशी? विदेशी बच्चा हुआ। विदेश में गॉड मदर को नहीं मानते, किसको मानते हैं? गॉड फादर को मानेंगे। ये गायन है ही उस माता पिता का। क्या कहा? अभी देखो, इस बाप बोला और यहाँ क्या बोल दिया? उस माता पिता का। अब उस दूर क्यों कर दिया? बोलने वाला तो उसी के बाजू में बैठा हुआ है। बोलने वाला जो बाप है वो किसके बाजू में बैठा है? इस ब्रह्मा के बाजू में बैठा हुआ है। तो ये अभी इस बोला और अभी अभी उस कर दिया, क्यों कर दिया? जरूर भविष्य में बजने वाला कोई पार्ट बाप का बाप के रूप में और माता का असली माता के रूप में कोई पार्ट है, जो भारतवर्ष में माता पिता के रूप में पूजा जाता है, जगत पिता जगदम्बा। तो बुद्धि उसे बेहद के माता पिता की तरफ चली जानी चाहिए। कहाँ चली जानी चाहिए? उस भविष्य के लिए इशारा कर दिया जो भविष्य में पार्ट बजने वाला है। ब्रह्मा की तरफ भी कोई की बुद्धि जाती नहीं है। क्या कहा? भक्ति मार्ग में जब कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो भक्ति मार्ग में ब्रह्मा की तरफ किसी की बुद्धि नहीं जाती। ब्रह्मा के मंदिर नहीं है, एक मंदिर है उसमें भी पूजा पूजा नहीं होती। बल जगदम्बा की तरफ कोई की जाती है, उनका भी मेला लगता है। किनका? जगदम्बा का मेला। किस बात की यादगार? सबसे बड़ा मेला जगदम्बा का लगता है, तो जरूर जगत पिता ने प्रैक्टिकल में जगदम्बा के साथ सबसे बड़ा मेला, सबसे जाति मिलन मेला जगदम्बा के साथ मनाया होगा। और इतनी हिम्मत किसी ने दिखाई नहीं होगी। क्या क्या करने की? मिलन मेला बनाने। परंतु आज की पेशेंट को कोई नहीं जानते। किसका ऑक्यूपेशन? न जगदम्बा के ऑक्यूपेशन को जानते और न जगत पिता के ऑक्यूपेशन धंधे को जानते। तो जगत पिता का धंधा क्या है? दुनिया उस बाप को बुलाती है तो किस लिए बुलाती है? इसलिए तो नहीं बुलाती कि आकर के ज्ञान सुनाओ। क्या कहते हैं? हे पतित पावन, आओ पतितों को पावन बनाओ, इस पतित दुनिया को पावन बनाओ, नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाओ। तुम जानते हो हमारी सच्ची सच्ची माता, माता कायदे अनुसार ये है ब्रह्मा है। क्या कहा? तो कौन से ब्रह्मा? जिसने शरीर छोड़ दिया उसके लिए बोला ना प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ ही है जिसके साथ प्रजापिता बैठा हुआ है। कैसी माँ? ऐसी बड़ी माँ जिसके साथ बड़ा बाप भी है। उन भक्तों की तरह नहीं कि वो सिर्फ गाते हैं जय माता दी, लेकिन पिता को भूल जाते। तो तुम जानते हो हमारी सच्ची सच्ची माता कायदे अनुसार यह है ब्रह्मा है। ये भी समझना है कि कायदे अनुसार हमारी माता यह कहते है। मुरलियों में तो बोलते हैं परंतु तन पुरुष का है। किसका? ब्रह्मा का। तो परंतु क्यों लगा देते हैं? तो कायदे अनुसार नहीं हुआ ना। कायदे अनुसार तो तब हो जबकि फीमेल चोला भी हो। एक भारतीय ऐसा देश है जिसमें माता पिता दोनों की पूजा होती है। तो ये भी समझना है, याद भी ऐसे करेंगे। कैसे? यह माता भी है तो ब्रह्मा बाबा भी है। फिर यहाँ किसके लिए बोला है? जिस समय उस सन में प्रवेश करके बोल रहे थे तो उस समय ब्रह्मा और बाबा भी है, क्योंकि बूढ़े को भी बाबा कहा जाता है।
लिखते हैं शिव बाबा किया रास ब्रह्म, तो माता भी हो जाती है तो पिता भी हो जाता है। अब बच्चों को इस पिता की दिल पर चढ़ना है, इस पिता की दिल पर ज्योतिबिंदु की दिल पर, ज्योतिबिंदु की तो बात ही नहीं है, ज्योतिबिंदु जिसने प्रवेश किया उसकी दिल पर चढ़ने की बात थी, क्योंकि इनमें ही शिव बाबा प्रवेश करते हैं। यहां बहुवचन क्यों कर दिया? अब बच्चों को इस पिता की दिल पर चढ़ना है। यहां इस पिता बोल दिया और यहां क्या बोल दिया? इनमें ही शिव बाबा प्रवेश करते हैं, यहां बहुवचन क्यों कर दिया? इसमें कहना चाहिए तो जरूर है कि यज्ञ के आदि वाली आत्मा जिसमें शिव बाबा ने पहले प्रवेश किया और ब्रह्मा ने जाकर के पूर्व बंगाल में पहुंच करके उस अर्थ को ढूंढा था क्लैरिफिकेशन लेने के लिए साक्षात्कारों का। अब व्यक्तवाणी में भी बोला इस अर्थ को कहां से पकड़ा? पूर्व बंगाल से। तो इसलिए इनमें शब्द बोल दिया, यानी दो आत्माएं हैं राम और कृष्ण, यही सत्य रूपी रंगमंच के हीरो हीरोइन है, जो आज से अंत तक हीरो हीरोइन का 5000 वर्ष के बड़े ड्रामा में भी पार्ट बजाते, तो शूटिंग पीरियड में भी यही आत्मा पार्ट बजाती। तो जब ये गारंटी देते हैं कि हाँ बाबा ये बच्चा बहुत अच्छा सर्विसेबल है, सभी को सुख देने वाला है, कौन गारंटी दे? हैं? ब्रह्मा। अभी भी कौन गारंटी दे? वो कैसे गारंटी देंगे? वो तो सूक्ष्म बतनवासी बताई हो गए, जरूर है वो सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा, उसको साकार शरीर तो गया दादा रे लेखराज वाला, लेकिन वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा बीज रूप स्टेज में प्रवेश हो, बीज रूप स्टेज में भी तो रहती होगी ना। तो हम बच्चों के लिए डायरेक्शन है साकारी आकारी निराकारी तीनों स्टेजेस में रहना, अभी अभी साकारी बनो, अभी अभी आकारी बनो, अभी अभी निराकारी बनो, बिंदु रूप बनो। तो उनका साकार शरीर अपना खत्म हो गया, तो बाकी दो स्टेजेस में तो वो आत्मा टिक सकती है ना। कौन कौन सी दो स्टेजेस? एक आकारी स्टेज और दूसरी निराकारी स्टेज। तो आकारी स्टेज में तो गुलजार दादी में प्रवेश होता ही है, जैसे और सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं किसी मनुष्य में प्रवेश करती हैं, तो उनकी निशानी होती है कि जिसमें प्रवेश करेंगे उनकी आत्मा गुम हो जाएगी। तो मनुष्य आत्माओं की प्रवेशता में और शिव बाबा की प्रवेशता में ये अंतर जरूर होता है। तो ब्रह्मा भी क्या मनुष्य थे या परमात्मा थे? मनुष्य थे। तो ब्रह्मा की सोल भी जब प्रवेश करती है सूक्ष्म शरीर से, तो गुलजार दादी का चेहरा मोरा बदल जाता है, उनको अपनी सुनाई हुई वाणी याद भी नहीं रहती। लेकिन वही ब्रह्मा की सोल जब प्रवेश नहीं होती है तो उस समय बीज रूप स्टेज में भी रह सकती है। तो जिस समय बीज रूप स्टेज में होती है वो ब्रह्मा बच्चों में कहीं न कहीं प्रवेश करके, जैसे शिव बाबा प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं, पता ही नहीं चलता कब आए और कब चले गए, बाद में पता चलता है कि ये पॉइंट तो हमारी बुद्धि में था ही नहीं, ऐसे फोर्स में तो हमने कभी किसी की सर्विस की नहीं। तो वो मम्मा बाबा की सोल अभी भी बच्चों में प्रवेश करके नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार उन माला के मनकों में प्रवेश करके सर्विस करती रहती है। वास्तव में तमो प्रधान आत्मा कोई सर्विस नहीं कर सकती, कौन करती है? वो ही आत्मा प्रवेश करके सर्विस करती। तो बोला तो जब यह गारंटी देते हैं कि बाबा ये बच्चा बहुत सर्विसेबल है, सभी को सुख देने वाला है, मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख नहीं देता है, तब ही शिव बाबा की दिल पर चढ़ सकता है। क्या था? तो वो ब्रह्मा तो चले गए, वो गारंटी कैसे देंगे? तो गारंटी कौन देगा? है? हाँ जरूर है, वो ही ब्रह्मा की सोल एडवांस पार्टी में फिर किसी ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है और उसके थ्रू विश्व की बादशाही का वर्षा बच्चों को मिलता है, ब्राह्मण बच्चों को। तो जब तक वो जगदम्बा कहो या ब्रह्मा कहो बड़ी अम्मा कहो, वो जब तक गारंटी न करे ये बच्चा सर से बोले, उनका सही निशान लगना चाहिए, तब तक बाबा की दिल पर चढ़ नहीं सकता। मन सवार का कर्मणा से जो बोलो उससे सबको सुख मिले, दुख किसको नहीं देना। दुख देने का विचार पहले मनसा में आता है, फिर कर्मणा में आने से पाप बन जाता है। मनसा तूफान तो जरूर आएंगे, परंतु कर्मणा में कभी भी नहीं लाओ। अगर कोई रंज होता है दूसरा पे, तो बाप से आकर के पूछो, बाबा ये बात से हमारे से ये नाराज रहता है। यहाँ किसको नाराज और खुश करने की बात चल रही है? हैं? अभी जो बात चल रही थी किसको नाराज और खुश करने की चल रही थी? हैं? ब्रह्मा। अरे पिता वो तो बिंदु रूप है ही, वो तो सदा संतुष्ट है ही, उसकी बात क्या है? बात चल रही थी ब्रह्मा माता की, जगत माता की, कि जगत माता को जब तक खुश करना नहीं आया तब तक बाप से भी कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अगर कोई बात नहीं समझ में आती है, माँ ने कोई डायरेक्शन दिया और नहीं समझ में आया, तुम उसे मानने में संतुष्ट नहीं हो, तो क्या करो? बाबा से आकर पूछो कि हमसे ये नाराज रहता है, तो बाबा समझाएंगे। कोई भी बात पहले मनसा में आती है फिर कर्मणा में आती है। वाचा भी कर्मणा हो गया, क्या कहा? वाचा भी क्या हो गई? क्योंकि कर्मेंद्रिय है ना, कर्मेंद्रिया तो शरीर से ही संचालित होती है, तो वाचा जिज्ञा, जिज्ञा शरीर का अंग नहीं है क्या? तो अगर बच्चों को माँ बाप की आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलना, ये बड़ी गुह्य बात है, साधारण बात नहीं है, जो एक को ही माता पिता कहते हैं। क्या कर ओम शांति। 17/88 का प्रातः क्लास चल रहा है, 15 नंबर के रजिस्टर में 44 पेज अर्थात दूसरे पेज का मध्यादि। तो रुद्रमाला के दो मड़के हैं, पहले राइट ईयर में और लेफ्ट ईयर में, जो जगत पिता जगत माता का पार्ट बजाने वाली आत्माएं, राम कृष्ण की विशेष आत्माएं हैं। तो ये दो ही आत्माएं रुद्रमाला के मन के ऐसे हैं जो संसार रूपी रंगमंच पर कौन सा पार्ट बजाते हैं? हीरो और हीरोइन का पार्ट बजाते हैं। तो ये बड़ी गुह्य बात है कि एक को ही माता पिता कहते हैं, उनका चित्र भक्ति मार्ग में कौन सा बनाया है? अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष का अंग शंकर का और आधा अंग कौन सा दिखाते हैं? पार्वती स्त्री का। तो ये माता पिता का कंबाइंड रूप है, बच्चे इनको अलग अलग समझ लेते हैं। क्या? कि बाप का डायरेक्शन कुछ और है और माँ का डायरेक्शन कुछ और है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। बाप ने तो जब माता के ऊपर छोड़ दिया तो माता का जो भी डायरेक्शन मिले तुम उसे फॉलो करो, अगर कुछ उल्टा सीधा होगा तो जिम्मेवारी किसकी? सुबाबा की बाप की जिम्मेदारी, तुम क्यों चिंता करते हो? तो बताया, ये बड़ी कोई बात है। एक कोई माता पिता कहते हैं ये ब्रह्मा बाप भी है तो बड़ी माँ भी है। अब ये बाबा किसको माँ कहे? ये माता, अब किसको माँ कहे? मुरली जिस समय बोली गई ब्रह्मा के तन से, तो उस समय इस वाक्य को लागू करो। यह माता माना ब्रह्मा, अब किसको माँ कहे? इन माँ की तो कोई माँ हो नहीं सकती। जैसे शिव बाबा का कोई बाप नहीं, क्या था? कौन सी माँ की कोई माँ नहीं हो सकती? हाँ, जगदम्बा की कोई माता नहीं हो सकती। बाकी ये नहीं कि ब्रह्मा की कोई माता नहीं थी। ब्रह्मा की अगर माता नहीं थी तो मुरलियों ने ऐसा क्यों बोला? ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी, शिव बाबा उनमें प्रवेश करते थे, तो उनसे भी ज्यादा पावरफुल हुई ना। तो दादा लेखराज तो कृष्ण की सोल है। कृष्ण को बच्चा कहा जाता है, सृष्टि का पहला पत्ता कहा जाता है। तो पहले पत्ते को जन्म देने वाले माता पिता भी जरूर कोई होंगे। जड़ रूपी माता आधारमूर्त और पिता को बीज रूप, बीज को पिता कहा जाता है। तो यज्ञ के आदि में वो दोनों ही थे, गीता माता और शिव बाबा, शिव बाप। पहले बाप की जयंती, फिर गीता माता की जयंती। गीता पति भगवान कहा जाता है, तो गीता माता भी चैतन्य में होनी चाहिए। तो गीता पति भगवान भी चैतन्य में बोलता चलता होना चाहिए, और फिर कृष्ण बच्चा भी चैतन्य में होना चाहिए। तो तीनों ही यज्ञ के आदमी थे। बिना त्रिमूर्ति के शिव बाप नहीं होता, कहा जाता त्रिमूर्ति शिव। बिना तीन मूर्तियों के शिव कभी आता ही नहीं। शिव ज्योति बिंदु अकेला नहीं आता, जब आएगा तो तीन मूर्तियों को जरूर लाएगा। तो बताया, मुख्य बात बच्चों को समझाते हैं कि अगर मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख देंगे तो दुख पाएंगे और पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। बच्चे साहब के आगे सच्चा रहना है। क्या सीख दी? जो सच्चा साहब गाया हुआ उसके आगे सच्चा रहना है, इनसे भी सच्चा रहना है। किनसे? इन ब्रह्मा से भी सच्चा रहना है। और जिस समय बोला गया, किस समय बोला गया? ब्रह्मा के तन से, बच्चे साहब के आगे सच्चा रहना है। तो उस समय कौन था आगे? उस समय तो ब्रह्मा के तन से बोलने वाला, तो वो साहब और ब्रह्मा को बीबी कहें। साहब होगा तो बीबी भी, जब साहब को तो सुख मिले। तो बोला, इनसे भी सच्चा रहना, यानी ब्रह्मा बाबा से भी सच्चा रहना। ये दादा ही सर्टिफिकेट देंगे? अभी नहीं दे रहे हैं। कब के लिए बोला? भविष्य के लिए। ये दादा ही सर्टिफिकेट देंगे कि बाबा ये बच्चा बड़ा सपूत है। बाकी शिव बाबा के लिए तो सब सपूत ही है। क्या
एक ही देवता ऐसा संसार में गाया हुआ है जो असुरों को भी आशीर्वाद का हाथ रखता और देवताओं को भी आशीर्वाद का हाथ रखता। वो गुणों अवगुणों को देखता ही नहीं, उसके लिए दोनों ही बच्चे हैं और दोनों ही प्राप्ति के अधिकारी हैं। सिर्फ क्या हिम्मत है बच्चे तो मद दे बाप, सिर्फ हिम्मत करने वाले हों तो बाप से मदद के पात्र बन जाते। लेकिन वैष्णो देवी जिसे कहा जाता है, उस विष्णु देवता के लिए कहीं भी शास्त्रों में ये नहीं है कि उसने असुरों को कभी तरजीह दी हो। असुर उससे वरदान नहीं पा सकते, इसीलिए मुरली में बोला है कि त्रिमूर्ति में शंकर की जगह जगदम्बा को रखना चाहिए। सरस्वती को रखा होता तो समझाने में सहज हो जाता। क्या समझाने में सहज हो जाता कि असुर संघारिणी कौन है, शक्तियां गाई हुई है कि असुरों का संघार कोई शंकर नहीं करता। शंकर बेचारा क्या करता है, कुछ भी नहीं, कुछ करता धरता है क्या, याद में बैठा हुआ चित्र दिखाया जाता है, ये चरित्र दिखाया है। तो याद में बैठना कोई कर्मेंद्रियों से कर्म करना हुआ क्या, कर्म काय से किया जाता है, कर्मेंद्रियों से। तो कर्मेंद्रियों से जब कुछ कर्म कर ही नहीं सकता, दिखाया ही नहीं जाता चित्रों में, तो क्या कहेंगे कि शंकर कुछ करता है, कुछ भी नहीं करता, क्या करता है, कुछ भी नहीं। वो तो सिर्फ याद कर सकता है बाबा, और ये बात निश्चित है कि याद से विष्णु की बात सही मिल सकती है, तो क्या नहीं हो सकता। अब अंत में अव्यक्त बाप दादा ने भी कहा कि बच्चे अभी तक जो तुमने सेवा की वो तो चीटी मार की सेवा की है, इससे विश्व की अब भी अंश मात्र आत्माओं को संदेश मिल पाया है। भारत में ही 70% गांवड़े के लोग हैं और शहर सिर्फ 30% है। तो 30% जो शहरों की जनसंख्या है उसमें भी ढेर सारे लोग नहीं जानते, और सब शहरों में अभी ये ज्ञान फैला हुआ भी नहीं। तो विश्व की अंश मात्र आत्मा को संदेश मिला है ना, तो इतनी बड़ी जेंट्री जो दुनिया में फैली हुई है उसको कैसे संदेश मिलेगा, क्या मनसा की शक्ति से, या वाचा की शक्ति से, या कर्मणा की शक्ति से, कौन सी शक्ति से मिलेगा। सिर्फ मनसा की ही शक्ति जब बच्चों की पावरफुल हो जाएगी, मनसा एकाग्र हो जाएगी, तो मनसा की शक्ति से ऑटोमेटिक चारों तरफ आवाज फैलेगा। तो बोला ये दादा सर्टिफिकेट देंगे, ये बच्चा बड़ा सपूत है, बाबा महिमा तो करते हैं, तो सबसे बच्चे हैं, तन मन धन से सर्विस करते हैं, कभी भी किसी को दुख नहीं देते हैं, वो इस बाप दादा और माँ की दिल पर चलते हैं, इनकी दिल पर चढ़ेगा, चढ़े माना उनके तख्त पर चढ़े। क्या कहा, इनकी दिल पर चढ़े, इनकी दिल पर माना ब्रह्मा माता जो बाजू में बैठा हुआ, बाजू में बैठा हुआ का मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा के तन में शिव बिंदु बैठा था और ब्रह्मा की भी सोल बैठी थी, उसके लिए कहा गया नहीं। किसके लिए कहा गया, जो भविष्य में माता पिता का प्रैक्टिकल पार्ट चलने वाला है उसके लिए बोला कि इनकी दिल पर चढ़े माना उनके तख्त पर चढ़े, उनके माना जो ऊंचे से ऊंचा करतार गाया हुआ है जिसका पार्ट भविष्य में प्रत्यक्ष होना है। हमेशा सपूत बच्चों की ये विचार रहता है हम गद्दी नसीन कैसे बने, यही तांत लगी रहती है। गद्दी तो नंबर वार 8 है, फिर 108, फिर 16108 भी है, जैसे उन स्कूलों में पास विदानर भी निकलते हैं, फिर फर्स्ट क्लास भी निकलते हैं और सेकंड क्लास भी निकलते हैं, थर्ड क्लास को तो कोई पूछता ही नहीं। आजकल ट्रेन में भी कितना लंबा समय से थर्ड क्लास तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया, पहले थर्ड क्लास होता था, अब थर्ड क्लास है ही नहीं। तो मालाएं भी कितनी है, तीन प्रकार की मालाएं, एक तो बाबा के सर पर दिखाई जाती है, शंकर के सर पर आठ मणकों की माला दिखाई जाती है जिससे जटाएं बंधी रहती है, और दूसरी गले की माला 108 रुद्रगणों की माला, और तीसरी कंगन हाथों में ही लपटी रहती है, वो है 16,000 की। हाथों में क्यों लपटी रहती है, तो जरूर सहयोगी बने होंगे भुजाओं की तरह, कोई लेफ्टिस्ट के रूप में सहयोगी बने, कोई राइटियस के रूप में सहयोगी बने, तो जो जिस रूप में सहयोगी बने वो उसी भुजा में लपेटे हुए। तो तीन प्रकार की मालाएं हैं, तो उनके अनुसार गद्दी नंबर वार हैं। परंतु अभी हम ऊंच पद पाए ऐसे क्यों समझे कि स्वर्ग में तो आ जाएंगे, प्रजापद में ही थे, ऐसे तो शोभता नहीं। जो तो कला कम हो जाए तब हम गद्दी पर बैठे, तब तो बच्चे बहुत पुरुषार्थ करेंगे कि हमने अगर लाडले बाबा से सूर्यवंशी का पूरा पूरा वर्षा नहीं लिया तो फिर हम कल्प कल्प नहीं लेंगे। अब अगर विजय माला में नहीं पिरोए गए तो कल्प कल्प नहीं पिरोए जाएंगे, ये कल्प कल्प की रेत है। अब अगर घाटा पड़ा तो कल्प कल्प घाटा पड़ता ही रहेगा। पक्का व्यापारी वह जो श्रीमत पर माँ बाप को पूरा फॉलो करे, कभी किसको दुख न दे। उसमें भी नंबर वन दुख है काम कटारी चलाना, क्या जितने भी दुख हैं देने के उनमें नंबर वन दुख कौन सा है, काम कटारी चलाना। बाप कहते हैं अच्छा कृष्ण भगवान वाच, ऐसे ही समझो तो वो भी नंबर वन है, उनको भी मानना चाहिए, तब तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। किनको मानना चाहिए, कृष्ण को, क्यों कृष्ण को मानने के लिए आज क्यों कह दिया, क्योंकि कृष्ण की वो आत्मा है जो मृदुल पार्ट बजाती है, मीठा पार्ट बजाती है, मीठी मम्मा। समझते हैं कृष्ण भगवान ने श्रीमत से शिक्षा दी है, अच्छा उनकी मत पर चलो। उसने भी कहा है कि काम महाशत्रु है, भला उनको जीतो, इन विकारों को जीतेंगे तभी कृष्णपुरी में आ सकेंगे। अब कृष्ण की तो बात नहीं है तो फिर किसकी बात है, अब माना कब है, अब माना कब संगम युग में कृष्ण तो होगा सतयुग में, अब कौन है, अब वही कृष्ण की सोल किस रूप में है, साकार में है, जगदम्बा के रूप में। तो इसलिए बोला कि अब कृष्ण की तो बात ही नहीं है, अब जिसकी बात है तो उसकी मत पर भी चलो। कृष्ण तो बच्चा था, कब था बच्चा है, सतयुग में बच्चा था और संगम युग में है ब्रह्मा, ब्रह्मा तो ब्रह्मा को बच्चा कहेंगे क्या, हाँ बड़ी माँ का पार्ट तो है लेकिन शिव बाबा के लिए तो बच्चा बुद्धि है कि नहीं,
अगर बच्चा कोई काम बिगाड़ देता है तो जिम्मेदारी किसकी होती है? बाप की जिम्मेदारी होती है। तो कसू तो बच्चा था, वो कैसे मत देंगे? कसू तो बच्चा था, वो कैसे मत देंगे? माना कसू की सोच जो संगत में पार्ट बजाती है, वो बच्चा बुद्धि का पार्ट बजाती है। मुरलियां उनके तन के द्वारा शिव बाबा बोलते तो हैं, लेकिन उनके गुह रहस्य को वो आत्मा स्वयं पूरा समझती नहीं है। अगर समझती हो तो सूक्ष्म शरीर के बंधन में भी न बंधे, शरीर रहते ही पूरा पुरुषार्थ कर दिखाए। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? नर से नारायण बनना। नर से प्रिंस बनने का हमारा लक्ष्य नहीं है। तो वो कैसे मत देंगे? जो कृष्ण बच्चा माना, बच्चा बुद्धि, राम बाप को कहा जाता है। इसका मतलब है राम वाली आत्मा बाप का पार्ट बजाती है और कृष्ण बच्चा माना रचना का पार्ट बजाता है। जब बड़ा होकर गद्दी पर बैठेगा तब वह मत देगा। क्या कहा? बड़ा होना माना समझदार होना। वही कृष्ण की सोल जो अभी एडवांस पार्टी में पढ़ाई पढ़ रही है, किसने प्रवेश करके है? जगदम्बा में साकार पार्टी किसका? जगदम्बा का। उसमें प्रवेश करके जब बड़ा हो माना समझदार हो, इसलिए सिखों में गायन है राज करेगा खालसा। कौन राज करेगा? खालसा माना खालिस, पवित्र आत्मा। तो जब बड़ा होकर गद्दी पर बैठेगा तब वो मत देगा। मुरली ने भी बोला ये जगदम्बा पहले बाप से विश्व की बाध्यता ही लेती है, फिर बच्चों को देती है। तो मत देने के लायक बनेंगे तब तो राज्य चलाएंगे ना। अच्छा, कृष्ण भगवान वाच कहते हैं मुझे याद करो। अब शिव बाबा तो कहते हैं मुझे निराकारी दुनिया में याद करो। और कृष्ण कहाँ हुआ? कृष्ण तो साकारी दुनिया में हुआ। और बाबा कहते हैं मुझे निराकारी दुनिया में याद करो। निराकारी दुनिया कहाँ है? निराकारी दुनिया कहते हो ऊपर परमधाम। अब पृथ्वी तो गोल, नॉर्थ पोल पर खड़ा हुआ आदमी कहाँ कहेगा परमधाम? नॉर्थ पोल पर खड़ा हुआ कहेगा परमधाम। और साउथ पोल में खड़ा हुआ आदमी होगा वो किधर कहेगा? परमधाम। तो परमधाम किधर हुआ है? ऊपर भी नीचे भी। तो अब परमधाम में किधर याद करें? एक्चुअली किधर हुआ? इसलिए मुझने की बात नहीं है, मुरली में बोला हुआ तुम बच्चे परमधाम को भी इस शक्ति पर उतार लेंगे। इसका मतलब वो परमधाम की बात नहीं है, यहाँ तो सब बातें प्रैक्टिकल में। परमधाम माना ऐसे ऐसे परा परे स्टेज रहने वाला, बुद्धि की परे स्टेज में रहने वाला धाम, जहाँ ब्राह्मण बच्चे बीज रूप स्टेज में संगठित में टिके हुए होंगे। ऐसा भी एक स्थान होगा। तीन पांडव भगवान बताए, एक जहाँ से दुनिया का राज्य चलेगा, एक जहाँ से स्वर्ग का संचालन होगा, स्वर्ग की पालना होगी, पवित्र बच्चों की पालना होगी, और एक स्थान वो जहाँ तपस्या होगी, सिर्फ बीज रूप स्टेज में बच्चे टिके हुए होंगे, तो वही परमधाम हुआ। सारी दुनिया की दृष्टि उस परमधाम में लगी हुई होगी जब आखिरी विनाश होगा, क्योंकि परमात्मा को तो सब प्यार करते हैं। उस स्टेज में टिके हुए होंगे सब बच्चे। तो बताया शिव बाबा तो कहते हैं मुझे निराकारी दुनिया में याद करो, कृष्ण कहेगा मुझे स्वर्ग में याद करो। क्या कहा शिव बाबा? कहते हैं अभी वर्तमान में। और कृष्ण क्या कहेगा? कृष्ण कहेगा मुझे स्वर्ग में याद करो। इसका मतलब दोनों दुनिया होंगी, स्वर्ग में कृष्ण वाली आत्मा वो पार्ट बजाएगी,
दिलवाड़ा मंदिर जिसकी यादगार है, तपस्या भूमि, बीज रूप स्टेज में टिकने वालों की यादगार, वहां पर शिव बाबा क्या कहेंगे, मुझे याद करो, मेरा सारी दुनिया में याद करो, शिव बाबा कहते हैं। और कृष्ण कहेगा मुझे स्वर्ग में याद करो, तो स्वर्ग का स्थापन होगा कौन से स्थान में, दिल्ली यमुना के कंठे पर। तो बताया वो भी कहते हैं काम महाशत्रु कौन, कृष्ण भी कहते हैं काम महाशत्रु है, और शिव बाबा भी कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, वहां दुख नहीं मिलेगा, तो दुख को छोड़ पवित्र बनो। ये तो कृष्ण का बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा समझो, मनुष्यों ने मेरा नाम निकाल बच्चे का नाम ठोक दिया, यहाँ समझाने वाला कौन है, कृष्ण का बाप। सतयुग में जो कृष्ण होगा उसका भी बाप बैठे समझाते हैं, सतयुग में जो कृष्ण बच्चा होगा उसको कोई बाप होगा कि नहीं होगा, क्या ऐसे ही ऊपर से सितारा नीचे आएगा और प्रिंस बन जाएगा जैसे चित्रों में दिखाई दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। कृष्ण बच्चे को जन्म देने वाला भी कोई निर्विकारी बाप होगा, जो कृष्ण से भी ज्यादा निरेका निर्विकारी स्टेज में टिका हुआ होने वाली आत्मा होनी चाहिए। कृष्ण 16 कला संपूर्ण, तो वो कलाओं से भी अतीत, कलाओं से भी परे। कृष्ण की तो जन्म होने के बाद कलाएं फिर भी कुछ न कुछ नीचे जाती रहेंगी, और उसको जन्म देने वाला जो बाप होगा वो तो लगातार चढ़ती कला का पाठ बजाने वाली आत्मा अंत में ऐसा पाठ बजाने वाली होगी। सिर्फ वही नहीं, जितने भी उसके साथ सहयोगी बच्चे होंगे, राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाले, वो सब प्रकृति को भी चेंज करने वाले, परिवर्तन करने वाले बच्चे होंगे, क्योंकि चैतन्य की बुद्धि को चेंज करना ये तो सहज है, क्योंकि चैतन्य चेंज किया जा सकता है, क्योंकि बुद्धि होती है उसमें, और जड़ को चेंज करना और ज्यादा कठिन है, ये सिर्फ योग बल के बगैर और हो ही नहीं सकता। चैतन्य को तो ज्ञान सुना के चेंज कर दो, लेकिन जड़त्व तो ज्ञान भी नहीं सुनता, इसलिए बताया कि दोनों ही कहते हैं कि काम महाशत्रु है, कृष्ण भी कहते तो बाप भी कहते, अब उनको भी मानते थोड़े ही हैं, किनको, कृष्ण की भी बात नहीं मानते, उन पर भी चलते थोड़े ही है, समझते हैं कृष्ण खुद आए तब हम उनकी मत पर चलेंगे, तब तक तो गोते ही हम खाते रहेंगे, कौन समझते हैं, कौन से मनुष्य, कौन सी दुनिया के मनुष्य समझते हैं। सन्यासी आज तो स्वर्ग में जा ही नहीं सकते, वो मुख से पूछ भी नहीं सकेंगे कि स्वर्ग में चलोगे, कौन सी दुनिया के सन्यासियों की पहले बात है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे सन्यासी हैं जो 21 जन्मों में से जो पहला स्वर्ग है, जिसको हम बच्चे तो आंखों से देखेंगे, लेकिन वो उस पहले नंबर के स्वर्ग में जा भी नहीं सकेंगे, और किसी को मुख से कह भी नहीं सकेंगे, पूछ भी नहीं सकेंगे कि स्वर्ग में चलोगे, मैं तुमको राज्य उसे खिलाने आया हूँ, वो ये कह नहीं सकते क्या कि मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ। ये तो सब बात ही समझाते हैं, और सारे संगम की बात है। कृष्ण है सतयुग में, उनको भी ऐसा लायक बनाने वाला कोई तो होगा ना, किनको, कृष्ण को ऐसा लायक बनाने वाला, कैसा लायक बनाने वाला, जो कृष्ण कहे क्या कहे कि पवित्र बनो, तो शिव बाबा खुद कहते हैं, सन्यासी तो कहते कह नहीं सकते कि दरगस में रह करके पवित्र बनो। कृष्ण तो जब खुद गृहस्थ में रहने वाला होगा तो दूसरों से कहेगा पवित्र बन। तो शिव बाबा खुद कहते हैं कृष्ण और उनके सारे घराने को अब मैं उनको स्वर्ग में ले जाने लायक बनाए रहा हूँ। हाँ, सारे ही घराने को कहाँ ले जाने लायक, स्वर्ग में ले जाने लायक बनाए रहा हूँ। ऐसे नहीं कि सिर्फ ज्ञान ज्ञान सुनाई के भाग जाता हूँ और फिर बच्चे अपने आप स्वर्ग स्थापन करते रहेंगे। तो स्वर्ग में लाने लायक बनाए रहा हूँ क्योंकि माया ने बिल्कुल नालायक बना दिया है। बाबा कितनी मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग में उच्च पद पाए, नहीं तो पढ़े लिखे आगे जाकर बरी उठाएंगे। बाप से तो पूरा वर्षा लेना है ना, अपने से पूछो हम इतने सपूत हैं जो बाप से पूरा वर्षा लें। क्योंकि ये बात वहां भी लागू होती है, कहां दादा लेगरा जी के तन से जब बात वाणी चलाई गई तब भी ये कहा था कि अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे, और वही बात की अभी भी लागू होता है क्या कि बच्चे चलन सही करो, नहीं तो क्या होगा अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। मानो विजयमाला आगे चली जाएगी और रुद्रमाला वाले पीछे रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे तो रुद्रमाला के मन के बाद में विजयमाला में ऐड करने पड़ेंगे, होता है क्या? पक्का कर दिया आगे अभी है कहाँ, अभी तो आगे नहीं है विजयमाला, अभी तो आगे नहीं है
लेकिन होना तो
नहीं। अभी तो एडवांस पार्टी के तीन ग्रुप्स बता दिए, एक प्लानिंग पार्टी, एक प्रैक्टिकल पार्टी, और दोनों में प्रवेश करके जो पार्ट बजाने वाले हैं मम्मा बाबा और मनमोहनी दीदी जैसी आत्मा है वो इंस्पिरेटिंग पार्टी, उमंग उत्साह बढ़ाने वाली पार्टी। तो प्रैक्टिकल में तो दो ही पार्टी है, प्लानिंग पार्टी और दूसरी प्रैक्टिकल पार्टी। तो प्रैक्टिकल पार्टी अभी फील्ड में है, अभी तो फील्ड में ही नहीं, प्रैक्टिकल तो प्योरिटी से होगा। और रुद्रमाला के मां के तो जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाले भारत के तमो प्रधान है, राजा ज्यादा तमो प्रधान हुए हैं, ज्यादा पतित हुए हैं या भारत की रानियां ज्यादा पतित हुई है? राजा जाति विचारी बने अनेक रानियां रखने के कारण, तो उनको ही ज्ञान जल की ज्यादा जरूरत है, इसलिए रुद्रमाला पहले तैयार होती है और विजयमाला अंत में तैयार होगी। इसलिए मुरली में बोला अव्यक्तवाणी में, पहली अव्यक्तवाणी में बोल दिया भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो बताया अपने से पूछो इतने सपूत हैं, सपूत भी नंबरवार होते हैं, उत्तम सपूत, मध्यम सपूत और कनिष्ठ सपूत। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को कहते हैं अपने से पूछो हम सपूत हैं मध्यम हैं या कनिष्ठ हैं, उत्तम तो कभी छिपे नहीं रहते। क्या पहले कौन प्रत्यक्ष होंगे? वो उत्तम होंगे, वो तो पहले प्रत्यक्ष होंगे, छिपे नहीं रह सकते, उनकी दिल में रहम आएगा हम भारत की सेवा करें। सोशल वर्कर्स भी नंबरवार होते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, कई तो बहुत लूटते हैं, माल बेच करके खाते हैं, फिर उनको सपूत सोशल वर्कर कहेंगे? सोशल वर्कर्स होते हैं ना, जैसे रेड का संस्था होती हॉस्पिटल्स वगैरह में, स्वयंसेवी होते हैं, तो उनको बहुत मान मिलता है मरीजों वगैरह को बांटने के लिए। लेकिन जो सच्चे होंगे वो क्या करेंगे, वो तो बांटते रहेंगे, अपने हाथ कम लगाएंगे और सेवा में जाति लगाएंगे, और जो झूठे होंगे वो माल को खुद बेच करके खा जाएंगे। तो सोशल वर्कर्स अपने को बहुत कहलाते हैं क्योंकि सोसाइटी की सेवा करते हैं, कहलाते हैं, वास्तव में होते नहीं समाज सेवी। सच्ची सेवा तो बाप ही करते हैं। सभी धर्म वालों को मुक्ति धाम में ले जाते, तो देखो कितनी सेवा करते हैं और कराते हैं। सिर्फ देवता धर्म वालों को नहीं ले जाते हैं मुक्ति धाम में, दुख धर्मों से मुक्ति कराकर किसको, सब धर्म वालों को, चाहे किसी भी धर्म वाला हो। तुम भी जानते हो हम बाबा के साथ रूहानी सर्वेंट हैं, तो अच्छों की तो सब सेवा कर लेते हैं, और अच्छों की सेवा करना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई कैसा भी हो, कितना भी दुख देने वाला हो, लेकिन सोशल वर्कर का काम क्या है, उसकी सेवा करना। तो बताया सारी सृष्टि तो क्या, पांच तत्वों को भी पवित्र करते हैं। कौन कौन है, हम बाबा के साथ जो रूहानी सर्वेंट हैं, क्योंकि बाबा का तो काम है चैतन्य आत्माओं को ज्ञान दे करके मन बुद्धि रूपी आत्माओं को सुधार कर देना। मन बुद्धि रूपी आत्मा जब सत संकल्पों वाली बन जाएगी तो इस दुष्ट संकल्प चलाने वाले, दुष्ट संकल्प वाइब्रेशन फैलाने वाली दुनिया का खुलासा हो जाए, तो सुप्रीम सोल का काम उस समय समाप्त हो जाता है जब दुनिया का विनाश हो जाए। लेकिन प्रकृति तो तमो प्रधान बन गई, एटम बमों के विस्फोट के कारण शिव बाबा वापस चला गया। तो अब तमो प्रधान बनी हुई प्रकृति, पांच तत्व जो सारी दुनिया में फैले हुए हैं, जो विकराल रूप धारण कर लेते हैं और